हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक नंबर 12। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण कीजिए, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैश्चिकीं। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद पांचवा अध्याय श्लोक नंबर 12। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। नारद जी कह रहे हैं, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलम् निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्षितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्षितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्षितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्षितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्षितं ശോഭത്തെ ജ്ഞാനമാലം നിരഞ്ജനം കുതഃ പുനഃ ശാശ്വതഭാദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മയദപ്യകാരണം നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുതഭാവവർഷിതം ന ശോഭത്തെ ജ്ഞാനമാലം നിരഞ്ജനം കുതഃ പുനഃ ശാശ്വതഭാദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മയദപ്യകാരണം. ശബ്ദം കാൽ നൈഷ്കർമ്മ്യം. നൈഷ്കർമ്മ്യം का मतलब होता है आत्म साक्षात्कार या सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर ऐसा कार्य आप कर रहे हो जो जिससे आप कोई इच्छा नहीं कर रहे, नैष्कर्म्यम, निष्काम कर्म इसको बोलते हैं. अपि के बावजूद, अपि मतलब उसके बावजूद, अच्युत अर्थात अमोघ भगवान, भाव अर्थात विचार, वर्जितम अर्थात विहीन या उसे रहित, न नहीं शोभते अच्छा लगता है, ज्ञानम अर्थात दिव्य ज्ञान, अमलम अर्थात धीरे धीरे, अलम का मतलब होता है धीरे धीरे, और निरंजनम यानी उपाधियों से रहित. कुतः पुनः शाश्वत भद्रम, कुतः मतलब फिर कहां से, पुनः मतलब फिर, शाश्वत निरंतर, अभद्रम यानी अहितकर या अशुभ, ईश्वरे ईश्वर के प्रति, न नहीं त च तथा, अर्पितम अर्पित किया हुआ कर्म अर्थात कर्म, यत अपि जो है, अकारणम अर्थात निष्काम. अत्यंत ही सुंदर और गुण भात यहाँ पर वेद व्यास जी बता रहे हैं नारद जी के द्वारा. नारद जी कह रहे हैं अनुवाद, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता. कितनी सुंदर बात है कि आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, उसका ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होता है, क्योंकि उसमें कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती है, लेकिन फिर भी आसक्ति से रहित होकर भी शोभा नहीं देता. क्यों? यदि न शोभते ज्ञानमालम निरंजनम, लेकिन फिर भी वो ज्ञान जो है वो निरंजन होता है, इसलिए शोभा नहीं देता, यानी क्योंकि उसके अंदर नैष्कर्म्यम अप्युच्यत. अच्युत का मतलब होता है भगवान, यानी कि अब भगवान के साथ उसमें कोई संबंध यदि नहीं जोड़ा गया. अच्युत भाव वर्जितम, यानी अच्युत अर्थात भगवान के साथ उसका जो भाव है वो उसमें नहीं लगाया है, तो वो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान भी अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता. फिर से पढ़े, आत्म साक्षात्कार ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होते हुए होने पर भी शोभा नहीं देता, यदि वो अच्युत अर्थात ईश्वर के भाव से शून्य होता है. कुतः पुनः शाश्वत भद्रम ईश्वरे, तो फिर प्रारंभ से उन स्वभावतः दुख प्रद तथा क्षणिक सकाम कर्मों के विषय में से क्या लाभ होता है, यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम में न आ सके. कुतः पुनः शाश्वत, यानी कि फिर जब आत्म साक्षात्कार का ज्ञान भी अच्छा नहीं लगता, जब उसमें भगवान का भाव नहीं होता है, कुतः पुनः शाश्वत अभद्र, अभद्र ईश्वरे यानी कि जो हितकर, अभद्र का मतलब होता है जो बहुत खराब यानी हीन दृष्टि के जो कर्म होते हैं. कौन से कर्म होते हैं? जो हम कार्य करते हैं लेकिन उसकी बदले में कुछ इच्छा रखते हैं, अर्थात सकाम कर्म, है ना। तो यहाँ पर कह रहे कुतः पुनः शश्वत अभद्रम ईश्वरे, तो वो भले हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न, भगवान से ही प्राप्त करने के लिए कोई सकाम कार्य कर रहे हैं, कोई तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान के उसके अंदर भगवान के प्रति कोई भी समर्पण नहीं है बल्कि अपनी इंद्रिय तृप्ति है, तो इसमें कहा जा रहा है तो वो तो वैसे ही दुखमयी है, वो तो स्टार्ट से ही दुखमयी है, यानी कि तो फिर प्रारंभ से ही स्वभावतः दुखप्रद तथा क्षणिक सकाम कर्मों का क्या लाभ होता है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम में न आ सके। यदि आप कार्य कर रहे हो, पहले भक्ति का भी कार्य कर रहे हो, लेकिन यदि उसमें आपकी इंद्र तृप्ति की बात आ रही है तो वो भक्ति के लिए काम में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे कार्य करने से आपका क्या लाभ होगा। एक बार फिर से ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, अत्यंत सुंदर है। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो, तो फिर प्रारंभ से उन स्वभावतः दुखप्रद तथा क्षणिक सकाम कर्मों से क्या लाभ होता है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम में न आ सके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि न केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्ति से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी है। यदि उपर्युक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला नहीं है। ऐसे काल्पनिक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में या अंत में सदैव कष्टकारक होता है। यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन पर किया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा वह भवबंधन का कारण होता है। सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता भगवान है, और जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो यह घोर कष्ट का कारण बन जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। यहाँ पर इस श्लोक में तीन प्रकार के कर्मों के विषय में बताया गया। एक तो जो भगवान की भक्ति के लिए किए जाते हैं, एक निष्कर्म यानी आत्म साक्षात्कार जो निराकार ब्रह्म के साथ अपना तदात्म्य के सब ब्रह्म है, मुझे ब्रह्म में लीन होना है वो, और दूसरा सकाम कर्म जो कार्य हम करते हैं लेकिन उसके बदले में कुछ चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, निष्कर्मीय अब अच्युत भाव वर्जितम, अगर आप आत्म साक्षात्कार कर रहे हो लेकिन उसमें भगवान की भक्ति यदि सम्मिलित नहीं है तो वो वो वाला कार्य जो है वो आपको कभी भी लाभप्रद नहीं होगा, उसकी वर्त सना की गई। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे सहायता की वर्त सना की गई है, यानी उस भक्ति की, उस वो भक्ति की जो विधि है जिसके अंदर भगवान के साथ कोई आपका रिलेशन नहीं है, बल्कि निराकार ब्रह्म में तदात्म्य होने के विषय में यदि आप सोच रहे हो, तो उसकी तो बात सुना की गई। क्योंकि आप देखोगे हरिदास जी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में बताया, तो उस मोक्ष की भी भर्त्सना की गई कि वो भी प्राप्त करने के बाद, अब वेद व्यास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान की शक्तियां विश अवतार है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, वो चार वेदों की ज्ञाता ही नहीं, चार वेदों के रचयिता है, वेदांत कृत। लेकिन इतना सारा शास्त्रों का राइटिंग करने के बाद, इतने सारे शास्त्रों को लिखने के बाद, और वेद व्यास जी ऐसे वक्ता नहीं थे जो कि बोल देते और फिर खुद कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, उन्होंने जो लिखा था उनकी लाइफ चलता फिरता वेद थे, वो एज इट इज प्रैक्टिकल करते थे। जैसे भगवद गीता में उन्होंने क्या लिखा है कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो योद्धाय युज्यस्व युद्धस्य कर्म कौशलम, कि अगर आप हर एक चीज को सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सबको यदि एक समान समझते हो, तभी आप स्थित प्रज्ञ हो। और यही कार्य कौशल है, कर्म करने का तरीका यही है कि आप उससे कोई भी ये आसक्ति ना रखो कि वो सक्सेस होना चाहिए या मुझे सुख दुख से अलग रहना चाहिए। भगवान के इन्होंने जो कुछ भी भगवद गीता में लिखा था और दूसरे शास्त्रों में लिखा था वो जानते थे और उनका अपने जीवन में वैसे ही पालन करते थे। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है फिर वो दुखी क्यों हो रहे थे? हाँ, वो तो अपना काम कर रहे थे बड़ी ईमानदारी के साथ, वेदों का उन्होंने लिखा था, लेकिन फिर भी वो, यहाँ पर हमने पढ़ा कि वो इतने असंतुष्ट हैं कि उनको अच्छा ही, वो बद्री का आश्रम में है और असंतुष्ट हैं वो कि उनको अच्छा ऐसा लग रहा है कि मैंने सही कार्य नहीं किया। तो भगवान तो कहते हैं कर्मण्येवाधिक रस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म कर लो फिर अच्छे तरीके से कर्म, जितना आप अच्छा सिंसियरली और सीरियसली कार्य करते हो उतना कर लो, फिर तुम्हें ना उसके फल की कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए और उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मैं बैठा हूँ, मैं खुद ही उसके बारे में सोचूंगा। तो फिर वेद व्यास यहाँ पर क्यों परेशान हो रहे हैं? उनके परेशान होने का क्या कारण है? उन्होंने तो कोई अपराध भी नहीं किया है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर एक शुद्ध भक्त के हृदय की जो कंडीशन है उसके विषय में बताएं। वेद व्यास जी अपने बारे में चिंतित नहीं है, वेद व्यास जी उन मनुष्यों के विषय में चिंतित है जिनको भगवान ने मनुष्य का देह तो दे दिया, लेकिन फिर भी उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मेरे मनुष्य देह को प्राप्त करके मैं उसे सार्थक कैसे बनाऊं। वास्तव में भक्तों, एक शुद्ध भक्त की ये निशानी है कि जब भी वो किसी मनुष्य को देखता है कि वो किस तरह से भौतिक आसक्ति में लिप्त है, तो उसे दुखी हो जाता है। तो वेद व्यास भी उन भौतिक जीवों के लिए जो मनुष्य रूप धारण करके यहाँ संसार में आए, लेकिन इतना मुश्किल से प्राप्त होने वाला मनुष्य देह प्राप्त होने के बावजूद भी वो ये नहीं जान सकेंगे कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि उन्होंने उनको वो लक्ष्य स्पष्ट रूप में दिया ही नहीं है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर देखो वास्तव में क्या होता है, ज्यादातर लोग इस संसार में जितने भी लोग हैं ज्यादातर तो असभ्य हैं। असभ्य का क्या मतलब होता है कि उनको पता ही नहीं है शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति मनुष्य देह धारण करके शास्त्रों का उल्लंघन करता है, शास्त्रों का पालन नहीं करता है, ना सुखम ना परम गति ना शांति, उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। भगवान ने भगवद गीता में कह दिया करके उसको तो न सिद्धिम न सुखम न परम गति कुछ भी प्राप्त नहीं होगा जो शास्त्र को अध्ययन नहीं करता, उसके अनुसार अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं करता है। लेकिन अगर यहाँ पर तो अगर देखा जाए तो 90% तो ऐसे ही लोग हैं, है ना, जो शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं करते और ना ही उनको पता है शास्त्र में क्या लिखा है और ना ही शास्त्र को फॉलो करने की अगर पढ़ाई नहीं है, सुनाई नहीं है तो क्या फॉलो करेंगे। उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? बस यही जीवन का लक्ष्य है कि मैं पैदा हो गया हूँ, अब मैं ज्यादा से ज्यादा इनकम मेरी होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए और पति पत्नी होनी चाहिए, एक सुंदर सी और बच्चे होने चाहिए, उसके बाद में जैसा मैंने जीवन गुजारा ऐसा मैं उनको भी जीवन दूंगा। बस उन मतलब ये माइंड में नहीं है। और भौतिक जो एजुकेशन है वो भी कभी नहीं बताती कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। वो क्या बताती है कि आप कैसे इस संसार में सुखी रहो, है ना। अगर कोई भी भौतिक चीज आप सीख रहे हो, भले सीख रहे हो साइंस है कुछ भी है, आपको क्या बताएंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हो इस भौतिक संसार में। लेकिन शास्त्र तो ऐसा नहीं कहता। शास्त्र तो कहता है कि अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्वम। भगवान कहते हैं ये संसार तो अनित्य है, इसके अंदर तो सुख मैंने रखा ही नहीं है, इसको प्राप्त करके मेरा भजन करो। लेकिन फिर भी अब यहाँ आजकल के देखा जाए तो जो नेता है वो भी अपनी प्रजा को यही सिखाते हैं कि इस संसार में आपको कैसे सुखी होना है। जो एजुकेशन है वो भी आपको यही बताती है कि अपनी इंद्रियों से किस तरह से तुम ज्यादा से ज्यादा आनंद प्राप्त कर सकते हो, है ना। इन इंद्रियों से भौतिक चीजों से कैसे आनंद प्राप्त कर सकते हो, इंद्रियों को उनके विषय प्रोवाइड करके। और तो छोड़ दीजिए, माता पिता जो प्रथम गुरु हैं संतान के, वो भी बच्चे को यही सिखाते हैं। कभी कोई भी माता, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ेगा नहीं, तो उसे थप्पड़ मार के भी भेज देगी, लेकिन एकादशी के दिन भी अगर उसकी संतान माला नहीं करेगी, भगवान का नाम नहीं लेगी, गीता नहीं पढ़ेगी, तो बोलेंगे नहीं, बेचारा स्कूल जाता है ना, थक कर आता है, मैं कैसे उसको बोलूं कि आप भगवत गीता पढ़ो। तो मतलब ऐसी हद है कि वास्तविक जो उसके जीवन का लक्ष्य है वो देता ही नहीं कोई, और इस तरह से उसका जीवन दिन ब दिन बिगड़ रहा है मनुष्य का, और इस तरह से उसको कभी भी वो आगे बढ़ेगा नहीं, उन्नति कैसे करेगा जीव, जब वो बोले आज एकादशी है, आपने एकादशी नहीं की, सुबह से स्कूल जाता है फिर ट्यूशन जाता है, कैसे एकादशी रखे, एकादशी तो फिर खाएगा क्या वहां पर, है ना। तो फिर एकादशी में वो अपराध खा रहा है, पाप खा रहा है, तो फिर वो खा के भुगतने के लिए भी तो उसको फिर नरक में जाना पड़ेगा। यानी माता पिता स्वयं अपनी संतान के लिए नरक का द्वार खोल रहे हैं। तो ये असभ्य जीवन यहाँ पर हो रहा है। और इसके बाद क्या है, एक अगर कोई यहाँ पर जो दूसरा बताया गया सकाम कर, कि अगर कोई धर्म का या शास्त्र का पालन कर भी रहा है, शास्त्र को अध्ययन कर रहा है, तो उसका लक्ष्य क्या है, सकाम कर। जैसे कुछ लोग यज्ञ करते हैं कि भाई बारिश होनी चाहिए, कुछ पति प्राप्त करने के लिए, कुछ पत्नी प्राप्त करने के लिए, कुछ है ना धन प्राप्त करने के लिए, और भगवान के सामने जाते भी हैं तो झोली फैला के यही कि मुझे दुखों मेरे दुखों को निवृत्त करो, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर दो। और कभी कभी तो भगवान के सामने जाकर वो तरीका भी बताते हैं कि तो कहना हड्डा लाना है, जैसे कि लॉटरी जो टिकट खोले कि ये मेरा धन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बाकी सब मैं कर दूंगा। लेकिन ये सकाम कार्य जो हम करते हैं, जो भी भौतिक जैसे भी तपस्या करके या यज्ञ करके, अब यहाँ पर बताया गया कि नैष्कर्म्य जो अगर आप कुछ नहीं भी चाहते हो, सकाम कर्मों से बंधन से मुक्त है, जो आत्म साक्षात्कार का है, अब भी यानी उसके बावजूद भी अच्युत भाव वर्जितम, यदि वो भगवान के भाव से वर्जित है तो क्या है, न शोभते ज्ञान ज्ञानमालम निरंजनम, न शोभते, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो दिव्य ज्ञान है, वो भले नैष्कर्म्य है, आत्म साक्षात्कार का भी है, लेकिन यदि भगवान के साथ आपका संबंध जोड़ के आपको भगवान का प्रेम नहीं सिखाता तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर जीव क्या करते हैं, सकाम कर्म में फंसे होते हैं, तो और उसके बाद भी अगर कोई स्पिरिचुअल मास्टर भी होते ना, जो भौतिक होते हैं, मतलब जो गुरु परंपरा से नहीं होते हैं, बस ऐसे ही आध्यात्मिक की शिक्षा देते, वो भी आपको क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है आपको जीवन में मस्ती करनी है, मजा करना है, लेकिन साथ साथ में थोड़ी सी भक्ति भी कर लेनी चाहिए। लेकिन ये सब दिलासा है, ये सब आपके जीवन का सत्यानाश है, बर्बाद हो रहा है इस तरह से हमारा जीवन, कि ये झूठी जो कृत्रिम वृद्धि बताई जा रही है कि दूसरा कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त भी किसी चीज से आनंद आएगा, वो बिल्कुल बिल्कुल खुद को और दूसरों को धोखा देना। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया कि यदि आत्म साक्षात्कार है उसमें भी कृष्ण प्रेम नहीं है तो वो बिल्कुल भी अशोभते, अच्छा नहीं होता है। तो फिर कुतः पुनः शाश्वत अभद्रमीश्वरे, अभद्र मतलब सिर्फ वो सकाम कर्म कैसे अच्छा हो सकता है, जिसमें आप देवताओं की पूजा करते हो या भगवान की भी पूजा करते हो, लेकिन बदली में कोई इच्छा आपके अंदर है कि ये मेरी इच्छा पूरी हो, इंद्र तृप्ति को कोई भी कामना यदि पूर्ण करनी है तो वो कैसे शुभ हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं सकाम कर्म जिसमें सारे लोग तकरीबन लगे हुए होते हैं, प्रारंभ में या अंत में सदैव कष्टकारक होता है, ये तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। यानी कि आपका कार्य तभी, अब चाहे आप ध्यान लगा रहे हो ब्रह्म ज्योति का, लेकिन वो उससे भी आपको आनंद नहीं आएगा, सकाम कार्य कर रहे हो उससे भी आनंद आएगा नहीं, जब तक कि उसमें भगवत भक्ति को सम्मिलित नहीं किया जाता है, भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जोड़ा जाता है, तब तक वास्तव में ये जो जीव आत्मा है ना, ये भौतिक कष्टों के समाप्त करने से, क्योंकि वेदों में तो ज्यादातर यही बताया गया है कि आपके कष्टों का, आपके भौतिक शरीर के कष्टों का निवारण कैसे हो, लेकिन आत्मा की संतुष्टि की तो बात ही नहीं हुई है ना। कष्टों का निवारण करके ही केवल हमारी आत्मा तृप्त नहीं होगी, आत्मा को तृप्ति करने के लिए कुछ चाहिए, वो भटक रही है, तड़स रही है, तड़प रही है, जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए उसका साधन चाहिए उसको। तो अगर उसमें वेद व्यास जी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में लिखा है और आत्मा को तृप्त करने की कोई बात नहीं कही, तो उससे कैसे संतुष्टि हो सकती। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि वो कार्य भी भले आप करते हो, लेकिन जैसे भगवत गीता में बताया गया, क्या यत्तपस्यसि कान्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ यज्ञ करता है, जो दान देता है, जो तपस्या करता है और जो अर्पण करता है, वो सब मुझे अर्पण कर। जो भी कोई कार्य आप कर रहे हो, यदि उसमें भगवत भक्ति के अधीन है वो कार्य, तो ही आपको संतुष्टि प्रदान कर सकता है। क्योंकि भगवान कहते हैं केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे संतुष्ट किया जा सकता है, और जब तक कोई अनन्य भक्ति, भक्ति का क्या मतलब होता है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूल न कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, कि यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, ज्ञान की, कर्म की और कोई सकाम कर्मों के फल की कोई इच्छा नहीं है, अनुकूल न कृष्णानु, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यदि की जा रही है तो वही उत्तम भक्ति। और जब तक हम एक इस तरह से भक्ति नहीं करता ना कोई, अगर उसके अंदर कोई स्वार्थ है, कोई इच्छा है, कोई सकाम मांग है, तो भी वो भक्ति है, लेकिन तब तक वो आपको कंप्लीट आनंद प्राप्त नहीं कराती है जब तक कोई वो कार्य, भले वो सकाम कार्य है, लेकिन यदि वो कार्य टोटली भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, क्योंकि आत्मा को प्रसन्न करने का तरीका ये है कि हम भगवान को प्रसन्न करें, या जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो आत्मा कंप्लीट संतुष्ट हो जाती है। और भगवान से प्रेम नहीं, प्रेम का मतलब होता है कि एक प्रेमी एक प्रेमिका, तीसरा कोई नहीं हो उसमें कोई, और प्रेमी का एक ही कार्य होता है कि वो केवल यही सोचता है कि मैं कैसे अपने प्रियतम को संतुष्ट करूं, उसका और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं होता है। तो जब भक्त अपने भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा रखता है कंप्लीट, उसके बाद ही भगवान संतुष्ट होकर भक्त को वो प्रेम प्रदान करते हैं जिससे आत्मा संतुष्ट होती है। अंत में श्री प्रभुपाद ने एक बहुत ही सुंदर बात बताई है तात्पर्य में, कि अपने जो भी सकाम कर्म है उनके फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा वह भव बंधन का कारण बनते हैं। कि भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में, शुभाशुभ परित्यागे मोक्ष से कर्म बंधन है, कि यदि आप शुभ और अशुभ समस्त कर्मों के फलों को त्याग दोगे और मुझे समर्पित करोगे तो आप बंधन कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। और भगवान कहते हैं, और सॉरी श्री रूपा जी आगे कहते हैं, सकाम कर्म के प्रमाणिक भोक्ता भगवान है, आप जो भी कार्य करते हो वास्तव में भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, के जो भी कार्य आप कर रहे हो सकाम कार्य, उसके वास्तविक भोक्ता कौन है? भगवान है। और जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो यह घोर कष्ट का कारण बन जाता है। बहुत ही सुंदर और स्पेशल बात है यहाँ पर कि यदि सकाम कर्मों के फल को इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाया जाएगा, कोई जीव ये सोच रहा है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ और उसके बदले में मुझे भौतिक सुख चाहिए, खाली इसी सोच जो है वो उस कार्य को मलिन कर देती है। और यदि ये कॉन्शियसनेस होती है कि मैं ये शुभ कार्य कर रहा हूँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो इससे वो जो कर्म है वो इतना पवित्र हो जाता है कि वो आपको इतना संतुष्ट कर देता है कि आपको उस भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। कोई लोग बोलेंगे फिर, यदि भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है तो किधर जाएंगे, वो भी तो भगवान से मांगे। हाँ ठीक है, भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन देवाम जना सुकृत नोजन आटो जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी चर भरत दर्शक, के चार प्रकार के लोग आते हैं मेरी शरण में, आत धन चाहने वाले, जिज्ञासु ज्ञानी, और दुखों को संतुष्ट कर दुखों को खत्म करने वाले। लेकिन ये आते हैं, भगवान ने इनको भक्त नहीं कहा है, भगवान ने इनको क्या कहा है? सुकृतिनो, ये आते हैं मेरे पास, लेकिन वास्तव में क्या है? भगवान ने कहा मुझे कौन प्यारा लगता है? तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्त फिर विशिष्टते, जब वो ज्ञानी भी भक्ति में स्थित हो जाता है ना, जब वो मेरी भक्ति करता है, भक्ति का क्या मतलब है? और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, तब फिर वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि प्रियो ही ज्ञानी नोट अर्थम अहम सच्चा मम प्रिय, कि वो ज्ञानी जो होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए मैं भी उससे बहुत प्रेम करता हूँ। ये है वास्तविक जीवन का सत उपयोग, कि हम भगवान से प्रेम करें और भगवान से भगवान का प्रेम प्राप्त करें। तो यहाँ पर नारद जी बता रहे हैं वेद व्यास जी को कि अगर निराकार की भी भक्ति की जाती है, भले वो आध्यात्मिक कार्य होता है, आत्म साक्षात्कार का कार्य होता है, लेकिन फिर भी उसमें भगवान की भक्ति नहीं होती है तो वो आनंददायक नहीं होता है। तो फिर सकाम कर्म जो कि वैसे ही जीव को संतुष्ट नहीं कर सकते, कभी भी हमेशा जीव को विचलित करते हैं, वो भगवान की भक्ति के बगैर कैसे शुभ हो सकते हैं। यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि इस संसार में अगर जीव के लिए कुछ शुभ है, कुछ आनंद प्रदान करने वाला है, कुछ ऐसा है जो आपके जीवन को उसका वास्तविक गोल प्रदान करे, तो वो केवल और केवल भगवान से प्रेम है। तो आगे नारद मुनि वेदव्यास जी को बताएंगे कि वह प्रेम प्रदान करने के लिए जीवों को इस दुखमय संसार से बाहर निकालने के लिए आप भागवत की रचना करो। ये सब क्या लिख रहे हो, हम का अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो कृपया आप सब साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं गुरु और गौरंग को प्रसन्न करने के लिए आप सबकी अच्छी सेवा कर सकूं, जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। श्री कृष्ण।